على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فإنا لذلك لآية لقوم يسمعون مل کر درود پڑھیں اس سے بہتر اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی وجہ عزیزان گرامی قدر اشرے مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے اور آپ کی خدمت میں جس آئے کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها اور اس پانی کے نزول کے ذریعے سے اللہ نے زمین کو زندہ کیا اس وقت کے زمین جب مر چکی تھی اس کے بعد پروردگار عالم نے زمین کو زندہ کیا انا فی ذالک لآیتن لقوم یسمعون بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سننے والے کان رکھتے ہیں۔ دین کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک دین کا باطن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کو آپ اٹھا لیجئے، ہر چیز کو لے لیجئے، ہر واقعے کو لے لیجئے، ہر داستان کو لے لیجئے، ایک اس کا ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے، ایک اس کا منظر ہوتا ہے، ایک اس کا پس منظر ہوتا ہے۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو انسان فکر و شعور کے ذریعے سے سمجھتا ہے، جو ان آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے ظاہری چیز کہ جو بصارت سے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی بلکہ عقل و فکر کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے اس کے لیے انسان کو بصارت کی نہیں بلکہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان حقائق کو سمجھ سکے کہ جو پسے پردہ موجود ہیں۔ قرآن کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے، قرآن کا بھی ایک باطن ہے۔ جب پروردگار عالم کرتا ہوں تو ایک تو اس کا ظاہر ہے کہ جو پانی بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے، پانی اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جو انسان کی حیات کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ موضوع گفتگو کیا ہے آپ کے ذہن میں موجود ہے نا، احیاء دین میں اہل بیت کا کردار۔ آیت کیا منتخب کی ہے؟ اللہ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس پانی کے نازل کرنے میں اور اس مردہ زمین کو زندہ کرنے میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ کہ جو زندہ دل رکھتے ہیں۔ ایک ہے اس آیت کا ظاہر اور ایک ہے اس آیت کا باطن، اور اسی طرح کی مختلف آیات کہ جس کے اندر پروردگار عالم اسی مضمون یا اسی سے قریب قریب کچھ بات کر رہا ہے۔ ہر چیز کا ظاہر ہوتا ہے، ہر چیز کا باطن ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے موجود ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ میرا ظاہری جسم ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب مر جاؤں گا
इज्न से, तब भी ये जिस्म बाकी होगा या नहीं होगा? जिस्म बाकी होगा, लेकिन उसके बाद मैं नहीं हूंगा। आप मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारेंगे, बल्कि एक लाश की हैसियत से, एक मुर्दा की हैसियत से मुझे देखेंगे, एक जनाजे की हैसियत से मुझे देखेंगे। क्या फर्क पड़ा पहले वाले में और अब वाले में? फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो रूह मेरे अंदर थी वो रूह निकल गई है, जिस्म वही जिस्म है, जाहिर वही जाहिर है, लेकिन जब इस जाहिरी बदन में से रूह निकल जाए तो समझ में आता है कि इंसान की जो हकीकत थी अब वो खत्म हो चुकी है, अब वो तब्दील हो चुकी है। बस हकीकत क्या है? जिस्म नहीं बल्कि रूह। इसी तरीके से दीन की भी एक रूह है, आयात की भी एक रूह होती है, आमाल की भी रूह होती है। हम जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोजा रखते हैं, जो जकात देते हैं, जो जाहिरी तौर पर इबादत अंजाम देते हैं, इसकी भी रूह होती है, और इबादत की रूह को इखलास कहा जाता है। यानी परवरदिगार आलम की खातिर और रब्बुल आलमीन के लिए अमल करना और अपने आप को उसके साथ मखसूस करना और गैरे खुदा के लिए, गैरे खुदा से उम्मीद और गैरे खुदा से चाहत और गैरे खुदा से अजर को अपने दिल से निकाल देना कि गैरे खुदा से मुझे अजर चाहिए, गैरे खुदा से मुझे जजा चाहिए, गैरे खुदा की फिक्र को अपने दिल से निकाल देना और अमल को सिर्फ खुदा के लिए अंजाम देना, इखलास कहलाता है। यह है अमल की रूह, यह है नमाज की रूह, यह है रोजे की रूह, यह है जकात की रूह, और यही इखलास आजादारी की भी रूह है। बहुत से रास्ते हैं इस इखलास तक, क्योंकि एक मुश्किल सफर है ना, कि सिर्फ और सिर्फ उसके लिए अमल अंजाम देना कि जो अहलत तक्वा वल मगफिरा है, जो जिसके लिए जेब देता है कि अमल को अंजाम दिया जाए, जो इस लायक है, जो इस अहल है, जो इस काबिल है कि उसके लिए अमल को अंजाम दिया जाए, उसके लिए अमल को अंजाम देना सख्त मरहला है ना। बहुत से रस्ते हैं इस मरहले तक पहुँचने के लिए। एक रास्ता ये है कि तशवीक के जरिए से, किसी लालच के जरिए से, जन्नत की लालच, नेमतों की लालच, जजा की लालच, पादाश की लालच के जरिए से इंसान को उस रब तक, उस इखलास तक, उस बातिन तक, उस रूह आमाल तक पहुंचाया जाए। एक रास्ता है कि नहीं, लालच के जरिए से नहीं बल्कि खौफ के जरिए से, तमा के जरिए से नहीं बल्कि खौफ और खतर के जरिए से इंसान को रब तक पहुंचाया जाए, आमाल की हकीकत तक पहुंचाया जाए, इखलास तक पहुंचाया जाए। एक दफा खौफ के जरिए से, एक दफा रजा के जरिए से, एक दफा खौफ के जरिए से, एक दफा उम्मीद के जरिए से इंसान को अल्लाह तक पहुंचाया जाए, परवरदिगार आलम तक पहुंचाया जाए। एक और रास्ता हो गया, इसके अलावा भी बहुत से रास्ते हैं, लेकिन अहले दिल और अहले मारिफत बयान करते हैं कि इन तमाम रस्तों में वो रास्ता कि जिसके ज़रिए से इंसान बहुत जल्दी इस सफ़र को तय कर लेता है, वो है मोहब्बत का रास्ता। जब इंसान, हदीस में वारिद हुआ, रिवायत में वारिद हुआ, हले दीनो इल्लल हुब्बे वल बुग्ज़, क्या दीन मोहब्बत के सिवा भी कुछ है? क्या दीन मोहब्बत के अलावा भी कुछ है? क्या दीन मोहब्बत के बगैर भी कुछ है? अगर मोहब्बत ना हो तो दीन में कुछ बाकी रह जाता है? बस आमाल की हकीकत है इखलास। इखलास तक पहुंचने का रास्ता है मोहब्बत। जितना जल्दी हो सकता है इसको दफना दो, अब इसके रहने का कोई फायदा नहीं है, अब इसके वजूद का कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से अगर दीन का जाहिर रह जाए, लेकिन दीन के जाहिर में से इमामत को हटा दिया जाए, तो ये दीन भी मुर्दा हो जाता है, जिसे जितना जल्दी दफन कर दिया जाए उतना बेहतर होता है। इमाम के बगैर दीन ऐसे ही है जैसे जिस्म हो रूह के बगैर। इसीलिए सैयदुल शहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मेरे मौला और आका हुसैन ने कहा था, कद बुलियतिल उम्मत बिराए मिसल यजीद, जब उम्मत के ऊपर यजीद जैसे हाकिम बन जाए, जब उम्मत के हुकुमरान, जब उम्मत के हाकिम यजीद जैसे शख्स बन जाए, फअलल इस्लाम अस्सलाम, तो ऐसे इस्लाम पर मेरा सलाम हो, यानी ऐसे इस्लाम को फिर खुदा हाफिज कह देना चाहिए, ऐसे इस्लाम का फिर फातिहा पढ़ लेना चाहिए, फिर ऐसा इस्लाम इंसान की आखिरत तो कुजा, इंसान की जिंदगी भी नहीं सवार सकता। दीन इंसान की दुनिया और आखिरत की सआदत के लिए है ना, सिर्फ और सिर्फ कब्र के लिए नहीं है दीन, सिर्फ कयामत और बरजख और पुले सिरात पर दीन काम नहीं आएगा, बल्कि दीन इसलिए आया है ताकि मेरी जिंदगी को ठीक करे। इसीलिए हम कुनूत में जो दुआ पढ़ते हैं, कुरान की दुआ है, वो क्या है, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना, पहले मेरी दुनिया को ठीक कर दे, जब मेरी दुनिया ठीक हो जाएगी, जब मैं दुनिया में वैसी जिंदगी गुजारूंगा जैसी खुदा चाहता है, खुद ब खुद मेरी आखिरत ठीक हो जाएगी। इसीलिए तो कहा ना, रब्बना आतिना फिर दुनिया वफिल आखिरते, ए अल्लाह मुझे दुनिया में भी हसना आता कर, मुझे दुनिया मेरी दुनिया को भी इस्लाह कर दे, मेरी दुनिया को भी ठीक कर दे, मुझे दुनिया में भी नेकी अता फरमा, मेरी आखिरत को भी ठीक कर दे। इसीलिए ज़ियारत आशूरा में हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अज्अल महया या महया मुहम्मदियूं व आल मुहम्मद व ममाती ममाता मुहम्मदियूं व आल मुहम्मद, परवरदिगार मेरी जिंदगी को वैसा बना दे जैसा मोहम्मद और आल मोहम्मद की जिंदगी थी, परवरदिगार मेरी हयात को वैसा बना दे जैसा मोहम्मद और आल मोहम्मद की हयात थी, जब हयात वैसे ही हयात हो गई मासूम की इमाम से निकलने वाली जियारत में, मासूम इमाम की जबान से निकलने वाली जियारत में हमें सिखाया जा रहा है, अल्लाहुम्मा जल माहिया या माहिया मोहम्मद यू आले मोहम्मद व ममाती ममात मोहम्मद यू आले मोहम्मद, परवरदिगार मेरी जिंदगी को भी उनकी जिंदगी के मुताबिक कर दे, नतीजतन मेरी मौत को भी उनकी मौत के मुताबिक कर दे। बस जब दीन से उसकी रूह को जुदा कर दिया जाए, जब दीन से उसकी हकीकत को जुदा कर दिया जाए, तो नतीजा क्या पहुंचता है, दीन की जाहिरी सूरत और जाहिरी शक्ल तो बाकी रहती है लेकिन दीन की हकीकत फना हो जाती है। गदीर के बाद सबसे बड़ा जुल्म और सितम जो किया गया वो ये किया गया कि अहल को उसका हक नहीं दिया गया, यानी क्या, यानी दीन की रूह को छीन लिया गया। कोई नमाज ना पढ़े गुनाह मिलेगा, रोजा ना रखे गुनहगार होगा, हज पे ना जाए इस्तेदात होने के बावजूद खताकार होगा, कोई भी अमल ना करे खताकार होगा, लेकिन अगर कोई शख्स तौहीद का ही इनकार करे तो आप उसको क्या कहेंगे। अब ये वादी इस्लाम से वादी कुफ्र की तरफ जा चुका है या नहीं है, यही मरहला है इमामत के साथ। अगर कोई अल्लाह के बनाए हुए का इनकार करे, अगर कोई अल्लाह के भेजे हुए का इनकार करे, अगर कोई अल्लाह के वली का इनकार करे, अगर कोई अल्लाह की हुज्जत का इनकार करे, तो उसकी मिसाल उसी शैतान की सी है कि जो ये कहता हुआ नजर आता है, परवरदिगार जितने सजदे तू कहेगा तुझे करने को तैयार हूं, लेकिन तेरे बनाए हुए आदम के सामने एक सजदा भी गवारा नहीं है। परवरदिगार का जवाब क्या आता है, अपनी 6,000 साल, वो भी वहां के 6,000 साल के, जहां की एक रात 1,000 साल के बराबर है, उस मलकूत आलम के 6,000 साल की इबादत को अपने पास रख और मेरी बारगाह से निकल जा, अगर वो नहीं कर सकता कि जो मैं कह रहा हूं, अगर उसको नहीं मान सकता जिसको मैं बना रहा हूं, तो कल इबलीस को अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया था और आज गदीर के मुनकरों को अल्लाह अपनी बारगाह से निकाल रहा है। वल्लाहुल्ला यह दिल कौमल काफिरीन। अल्लाह काफिर कौम की हिदायत ही नहीं करता, गदीर की आयत का इख्तिताम। इसीलिए जब पैगाम विलायत और पैगाम इमामत पहुंचाया गया है पैगंबर की तरफ से, तो वो एहतमाम है जो एहतमाम इससे पहले कभी नजर नहीं आता। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता। ए हबीब, अगर ये नहीं पहुंचाया तो कुछ भी नहीं पहुंचाया। सवाल, क्या ये डर है, क्या ये खौफ है कि पैगंबर अकरम नाउज़ुबिल्ला रसूल के फरमान से सरपेची करेंगे, रसूल के फरमान का, रसूल खुदा परवरदिगार के फरमान का इनकार करेंगे, परवरदिगार कह रहे पहुंचा दो और नबी नहीं पहुंचाएंगे? हो सकता है, मुमकिन है, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो इस्मत कुबरा के मरहले पर जो फायज हो, जो नबियों का सरदार हो, जो आइम्मा का सरदार हो, क्या उसके बारे में सोचा जा सकता है कि वो अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुंचाएगा? फिर क्यों आवाज आ रही है? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। फिर क्यों आवाज आ रही कि अगर आपने ये नहीं पहुंचाया तो गोया आपने ना नमाज पहुंचाई है, ना रोजा पहुंचाया है, ना हज पहुंचाया है, ना जकात पहुंचाई है, ना तौहीद पहुंचाई है, ना रिसालत पहुंचाई है, ना नबूवत पहुंचाई है, ना कुरान पहुंचाया है, ना दीन पहुंचाया है, ना इस्लाम पहुंचाया है, ना शरीयत पहुंचाई है। अगर अली की विलायत को नहीं पहुंचाया तो कुछ भी नहीं पहुंचाया। क्यों? ए रसूल, अगर ये नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। क्यों? जवाब ये है, और बहुत वाज़े और बहुत सादा सा जवाब है कि परवरदिगार आलम यहाँ पर इस अम्र की अहमियत को बयान करना चाह रहा है कि देखो ये अम्र इतना अहम है, ये बात इतनी अहम है, ये काम इतना अहम है, ये विलायत इतनी अहम है कि अगर 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 रसूल ने, जो मुमकिन नहीं है कि रसूल ना पहुँचाए, वो इस्मत के मरहले पर फायज है, अगर नहीं पहुँचाया तो गोया कुछ भी नहीं पहुँचाया। यानी अगर तुमने सब कुछ कबूल कर लिया लेकिन अली की विलायत को कबूल नहीं किया तो कुछ भी कबूल नहीं किया। बस जो सिलसिला गुफ्तगु है वो आपके जहन में रहे, जो तरतीब गुफ्तगु है वो आपके जहन में रहे। हर चीज़ का एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। जाहिर अगर बाकी रह जाए लेकिन उसकी रूह बाकी ना रहे तो उसको मुर्दा कहा जाता है। आमाल का भी एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। जाहिर को कहा जाता है जिस्म, बातिन को कहा जाता है रूह। नमाज की, रोज़े की, हज की, इन सब की रूह क्या है? इखलास। इस इखलास तक पहुँचने का रास्ता क्या है? मोहब्बत। ये सारी बातें आपके जहन में रहे। अब आहियाए दीन में अहले बैत का किरदार, आहियाए दीन में आले मोहम्मद का रोल क्या है? पहले तो ये समझे कि दीन पर जो मौत के साए मंडलाने लगे, जिंदा उसे किया जाएगा ना जो मर चुका हो, जिंदा उसे किया जाएगा जो मौत के नजदीक आ पहुंचा हो या मर चुका हो। बस दीन जो मौत के नजदीक आ पहुंचा वो किस लिए, किस वजह से? क्योंकि दीन का जिस्म तो बाकी है लेकिन दीन की रूह उसमें से निकल गई है। मैं नहीं कह रहा, सैयदुल शहदा ने कहा ना, जुमला आपकी खिदमत में पेश किया, जब इस जैसा शख्स हाकिम और खलीफा और रसूल का जानशीन बन जाए तो ऐसे इस्लाम पर हुसैन का सलाम हो, यानी ऐसे इस्लाम को खुदा हाफिज कह देना चाहिए, ऐसे इस्लाम का फातिहा पढ़ लेना चाहिए। बस सबसे अहम हुक्म, सबसे अहम काम, सबसे अहम जिम्मेदारी क्या है? वो है वही जिसके लिए रसूल की रिसालत खतरे में पड़ रही है। दीन का भी एक जाहिर है और दीन का भी एक बातिन है। दीन के जाहिर को कवानीन और उसूल कहा जाता है, अहकाम, अकायद और अखलाक कहा जाता है, लेकिन दीन के बातिन को वजूद मुकद्दस इमाम कहा जाता है। बस जब इमामत को भुला दिया जाए,
جب امامت کو چھوڑ دیا جائے, جب امامت کو تنہا کر دیا جائے, جب امامت کے بغیر دین کو لے لیا جائے, تو وہ دین اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یزید جیسا شخص رسول خدا کے منبر پر آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کی حقیقت کو چھوڑ دیا گیا, دین کی جو حقیقت تھی اس کو بھلا دیا گیا, دین جس وجہ سے باقی تھا اس کو چھوڑ دیا گیا. جب اس حقیقت کو بھلا دیا گیا, جب اس حقیقت کو چھوڑ دیا گیا, تو اب نمازیں پڑھ رہی ہے امت, اب روزے رکھ رہی ہے امت, اب دعائیں پڑھ رہی ہے امت, طواف کر رہی ہے امت, لیکن یہ روح دین ان کے درمیان موجود نہیں ہے. اور پھر جب روح دین موجود نہ ہو, پھر پاکیزہ ترین افراد کو قربانی دینی پڑتی ہے. اور اس راہ میں اور اس ہدف اور مقصد کی خاطر, یعنی اسلام کی روح کو زندہ کرنے کے لیے, سب سے پہلی ذات جس نے اپنی قربانی دی وہ ذات حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. کتنا پاکیزہ لہو, یعنی کتنا اہم امر ہے جو بھلا دیا گیا ہے, کتنا اہم امر ہے جو فراموش کر دیا گیا ہے, جس کی خاطر حضرت زہرہ اپنے گھر سے زخمی جسم کے ساتھ باہر آ کر کہہ رہی ہے انسیتم یوم الغدیر. کیوں؟ کیونکہ دین کا جسم تم نے لے لیا اور دین کی حقیقت کو چھوڑ دیا ہے. دین کا جسم تم نے لے لیا لیکن دین کی روح کو تم نے چھوڑ دیا ہے. دین کا ظاہر تم نے لے لیا لیکن دین کا باطن تم نے چھوڑ دیا ہے. کسی نے آ کر پوچھا بی بی سے کہ کیا واقعاً رسول خدا نے امیر المومنین کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا تھا؟ جناب زہرہ نے جلال کے عالم میں جواب دیا انسیتم یوم الغدیر, کیا تم نے غدیر کو بھلا دیا ہے؟ کیا تم نے غدیر کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا ہے؟ اس نے اپنے سوال کو تبدیل کر کے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر علی کا حق تھا تو علی نے اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہیں کیا؟ توجہ ہے کیا پوچھا اس نے؟ اس نے بی بی سے پوچھا کہ اگر واقعی طور پر مولا علی کا حق تھا تو علی ابن ابی طالب نے اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہیں کیا؟ جناب زہرہ کی پاکیزہ زبان نے اس وقت وہ جواب دیا کہ بی بی کے سوا کوئی یہ جواب نہیں دے سکتا تھا. جناب زہرہ نے کہا امام کی مثال کعبے کسی ہوتی ہے, لوگ کعبے کے گرد طواف کرنے آتے ہیں, کعبہ کسی کے گھر پر نہیں جاتا, لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں, کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا. امت اتنی پستی کا شکار ہو گئی تھی جب دین کی روح کو چھوڑ دیا اور دین کے ظاہر کو لے لیا, جب دین کی حقیقت کو چھوڑ دیا اور دین کے جسم کو لے لیا. اچھا اس بات سے ایک حاشیہ لگا دوں کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ جسم ضروری نہیں ہے. نماز, روزے, حج, زکات کی اہمیت کم نہیں ہو رہی. ایک چیز کی اہمیت کو بڑھانے سے دوسری چیز کی اہمیت کم نہیں ہوتی. اگر کوئی مولانا آ کر ماں کی اہمیت پر اور ماں کی فضیلت پر اور ماں کے احترام پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے, اور کسی کے والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور مولانا آ کر ماں کے فضائل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ماں کے احترام کا اتنا ثواب اللہ نے رکھا ہے, تو اس کا کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ سے جا کر بدتمیزی کرو. کوئی یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ مولانا نے کہا ہے ماں کا احترام کرنا چاہیے, ماں کے قدموں کو چومنا چاہیے, ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہیے, ماں کی دعا جنت کی ہوا, اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے, رسول خدا اپنی ماں کا اس طرح احترام کرتے تھے, امیر المومنین کی ماں کی یہ فضیلت ہے, امام حسن اور امام حسین اپنی والدہ کا اتنا احترام کیا کرتے تھے, اس کا کہیں بھی یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جا کر اپنے باپ سے بدتمیزی کرے؟ نہیں آتا. کبھی بھی ایک چیز کی اہمیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسری چیز کی اہمیت کم ہے. نہیں, میں اس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہوں. किसी भी चीज को साबित करने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरी चीज की नफी की जा रही है। नहीं, मैं अभी इस मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा हूं। जिस्म अपने मकाम पर जरूरी है, रूह के लिए जो जर्फ है वो जिस्म है, रूह वो सवार है जिसके मरकब को जिस्म कहा जाता है, रूह वो सवार है जिसकी सवारी को जिस्म कहा जाता है। जरूरी है अपनी जगह पर, लेकिन जब रूह मर जाए तो तवज्जो करें, ये पाकीजा तरीन हस्तियां भी फरियाद कर रही हो, ये पाकीजा तरीन हस्तियां भी अपनी जान को कुर्बान कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद उम्मत में बेदारी नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये रूह मर चुकी है। आमाल की रूह है इखलास। जब इखलास, जब परवरदिगार के लिए अमल करने का जज्बा इंसान के दिल से मर जाए, उसके बाद अमल पर अमल करता रहे, रियाकारी के लिए कर रहा हो, सुकून नफ्स के लिए कर रहा हो, इत्मीनान कल्ब के लिए कर रहा हो, किसी को दिखाने के लिए कर रहा हो, आदत की वजह से कर रहा हो, किसी भी वजह से कर रहा हो, जब इखलास उसके अंदर से मर गया, तो अब उसकी ये नमाज का जाहिरी जिस्म तो है, लेकिन उसकी ये नमाज ना उसे बेहयाई से रोकेगी, ना मुनकरात से रोकेगी। अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज इंसान को बेहयाई से भी रोकती है और बुराई से भी रोकती है। हम क्या देखते हैं? नमाज पढ़ने वाला नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन माशाल्लाह से बेहयाई में भी उससे आगे कोई नहीं है, मुनकरात में भी उससे ज्यादा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन उस रूह के साथ नहीं पढ़ रहा जिस रूह को इखलास कहा जाता है। इखलास किससे निकला है? खलास, जो हम कहते हैं खलास कर दो, खालिस कर दो। ये क्या है? यानी कि किसी भी मिलावट से पाक करना अमल को इखलास कहलाता है, खुलूस कहलाता है। बाकी सबको खत्म कर देना, सिर्फ उसको दिल में जगह देना जिसने इस दिल को बनाया है, उसके लिए अमल अंजाम देना इखलास कहलाता है। उसकी खातिर काम करना खुलूस के साथ अमल कहलाता है। जब अहले बैत ने रोटियां दी है, तो रोटियां देने के बाद एक जुमला कहा है। अल्लाह को ये जुमला इतना पसंद आया आले मोहम्मद का, कि अल्लाह ने इस जुमले को सूरह दहर की आयत बना दिया। यहां आले मोहम्मद की जबान से जुमला निकला, लेकिन अल्लाह को यह जुमला इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा, कि अल्लाह ने इसे कुरान की आयत बना दिया। आले मोहम्मद की यह फजीलत है कि आले मोहम्मद की जबान से निकले हुए जुमलात कुरान की आयत बन जाते हैं। इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। आले मोहम्मद ने कहा, हम जो तुम्हें रोटियां दे रहे हैं ना, जनाबे जहरा के हाथ की बनी हुई रोटियां, वो पंजतन रोजे से हो, इफ्तार का वक्त हो, और जब साइल आए तो एक साइल को पांच अफराद अपनी रोटियां दे दे। अमीरुल मोमिनीन ने दी, जनाबे जहरा ने दी, हसन हुसैन ने दी, कनीज फिजा ने अपनी रोटियां दी, एक साइल को पांच लोगों ने रोटियां दी, और उसके बाद कहा, इन नमा नुत इमुकुम लिवजहिल्ला, हम जो तुझे खाना खिला रहे हैं ना, हम जो तुझे दे रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर दे रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम ना तुझसे जजा चाहते हैं, ना हम तुझसे शुक्रिया चाहते हैं। जुमलात को बदल दूं, ना हम तुझे जजा के काबिल समझते हैं, ना हम तुझे इस काबिल समझते हैं कि तू हमारा शुक्रिया कर सके। ये देखे, ये इखलास है। अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, उस वक्त साइल आता है, आप सब ने सुन रखा है, अमीरुल मोमिनीन अपनी अंगूठी निकाल कर साइल को देखते हैं, वहां से आयत नाजिल होती है, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुना सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली है कि जो ईमान लाया और नमाज कायम की और हालत रुकू में ज़कात देता है, वो तुम्हारा वली है। लोगों को पता चला कि अमीरुल मोमिनीन ने, भाई सदकात रोटियां तो सब देते थे ना फकीरों को, लेकिन आयत आई तो पंजतन की शान में, जकात तो सब देते थे लेकिन आयत आई तो अली की शान में। अब लोगों ने कहा कि अंगूठी को अगर रुकू में दिया जाए तो आयत आती है। लोगों ने भी इस अमल का तकरार किया। कई दिन तक साहिल को बुलाया गया और रुकू के आलम में अंगूठी निकाल निकाल कर सदका दी गई, लेकिन आयत आना तो दूर की बात, जो सदका दिया था वो भी जाया हो गया, क्योंकि आयत के लिए दिया खुदा के लिए नहीं दिया। अली ने जो जकात दी थी वो आयत के लिए नहीं दी थी, वो खुदा की रजा के लिए दी थी। अली ने जो अंगूठी दी थी वो आयत के लिए नहीं दी थी, वो इखलास के साथ परवरदिगार की खुशनूदी के लिए दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आयत भी मिल गई, फजीलत भी मिल गई, विलायत भी मिल गई। आयत भी आ गई, फजीलत भी आ गई, विलायत भी आ गई। क्यों? अमल किसके लिए किया था? फकत और फकत खुदा के लिए किया था। अमल की जो रूह थी वो बाकी थी। तलवार सब ने चलाई है मैदान में और सब ने अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया है, लेकिन जब साहिब जुल्फकार मैदान में आकर तलवार चलाता है तो पैगंबर की पाक जबान कहती है, ज़रबतो अली यौमल खंदके अफजलु मिन इबादत सकलैन। अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से बेहतर है। अली की एक ज़रबत सकलैन जिनों और इंसानों की इबादत के बराबर नहीं है, बल्कि जिनों और इंसानों की इबादत से बेहतर है। क्यों? क्यों जिनों और इंसानों की इबादत से बेहतर अली की तलवार का एक वार है? क्योंकि अली की तलवार जब उठती है तो सिर्फ खुदा के लिए उठती है, जब तलवार गिरती है तो सिर्फ खुदा के लिए गिरती है, जब तलवार किसी को कत्ल करती है तो सिर्फ खुदा के लिए कत्ल करती है। जब ये तलवार नियाम में चली जाती है और 25 साल तक ये तलवार और ये जुल्फिकार नियाम में रहती है, तब भी ये तलवार खुदा के लिए नियाम में रहती है। यानी जब अली कयाम करते हैं तो खुदा के लिए कयाम करते हैं, जब अली सुकूत करते हैं तो खुदा के लिए सुकूत करते हैं। यानी अली का फेल, अली का काम, अली का अमल, हर अमल सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए, और ये है अमल की रूह। अली नमाज पढ़े, अली का मतलब ही बुलंदी है ना। अली नमाज पढ़े तब भी अली है, अली जकात दें तब भी अली है, अली कुनूत करें तब भी अली है, अली सजदा करें तब भी अली है, अली सखावत करें तब भी अली है, अली शुजात के मैदान में भी अली है, अली अदालत के मैदान में भी अली है, अली हर मैदान में अली नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि इस जात ने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना कर दिया। और जब कोई इंसान अपनी जात को अल्लाह की जात में फना कर देता है, फिर अल्लाह उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है। इन्नल्लज़ीना आमनु, कुरान की आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। कौन चाहता है कि लोग हमसे मोहब्बत ना करें? कोई चाहता है आप में से कि हमसे सब दुश्मनी करें? कोई नहीं चाहता। सब क्या चाहते हैं? मुझसे लोग मोहब्बत करें। मोहब्बत को खल्क करने वाला बता रहा है, तुमसे लोग मोहब्बत कब करेंगे? इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, जो अमल करे ईमान के साथ, अल्लाह उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है। अल्लाह है जो मोहब्बत को दिलों में डालता है, जो अपनी जात को अल्लाह की जात में फना कर देता है, फिर अल्लाह उसके नाम को भी बाकी रखता है, उसके जिक्र को भी बाकी रखता है, उसकी मोहब्बत को भी जिंदा रखता है। फिर दुनिया उसकी मोहब्बत को मिटाना चाहती है, हुकूमतें उसकी मोहब्बत को छीनना चाहती हैं। हुकूमतें मिट जाती हैं, उसका नाम बाकी रहता है। मुहद्दिस के कलम टूट जाते हैं, उसका नाम बाकी रहता है, उसका तस्किरा बाकी रहता है, उसका जिक्र बाकी रहता है, उसकी याद बाकी रहती है, उसकी बात बाकी रहती है। मौजूदा नहीं, मोजिजा नहीं, कितना जुल्म ढाया गया इस जाते गिरामी पर कि अली नाम रखने पर पाबंदी लगा दी गई। जिक्र करना तो दूर की बात है, कोई ये नाम भी नहीं रख सकता, लेकिन आज ये नाम कितना चमकता दमकता हुआ तारीख के और आंख पर नजर आता है। क्यों? क्योंकि इस जात ने अपने आप को अल्लाह के लिए फना कर दिया। अब अल्लाह ने इस जात को वो इज्जत दी, वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया, वो अजमत अता की कि अब ये जात जिस्मों पर हुकूमत नहीं करती, ये जात अब मोमिनों के दिलों पर हुकूमत करती है। नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अली, अगर मैं मुनाफिक को सारी दुनिया का माल और दौलत दे दूं और उससे सिर्फ ये कहूं कि वो तुझसे मोहब्बत करे, ए अली, वो तुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। और अगर मैं मोमिन की नाक पर तलवार रखकर कहूं कि वो तुझसे नफरत करे, वो मोमिन कभी तुझसे नफरत कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मोमिनों के दिल में तेरी मोहब्बत को डाल दिया है, कभी मुनाफिक के दिल में तेरी मोहब्बत आ ही नहीं सकती, कभी मुनाफिक के दिल में तेरी मोहब्बत आ ही नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ अली की हुकूमत इंसानों पर नहीं है। इमाम शाफई ने कहा था, अलीयुन, क्या कहा था, क्या अजीम शेर कहा है, अलीयुन, अली वो है इमामुल इंस वल जिन्ना, अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, अली वो है जिसकी मोहब्बत सिपर है, अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना। जुमलात पर काफियों पर गौर कीजिएगा, अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, अली की मोहब्बत वो है कि जो सिपर है। किससे सिपर है? दुनिया में जो गुनाहों के तूफान आ रहे हैं, अगर उससे कुछ सिपर बन सकता है तो वो अली की मोहब्बत है। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, इमामुल इंस वल जिन्ना, अली वो है कि जिसकी हुकूमत और जिसकी इमामत सिर्फ इंसानों पर नहीं है, इमामुल इंस वल जिन्ना, अली इंसानों के भी इमाम है, अली जिनों के भी इमाम है। मस्जिद कूफा में एक दरवाजा है कि जिस दरवाजे को दरवाजे सोबान कहा जाता है, बाबुस सोबान। मस्जिद कूफा की फजीलत आपके जहन में मौजूद है। मस्जिद कूफा वो मकाम है कि जहां पर अमीरुल मोमिनीन को शहीद भी किया गया, अमीरुल मोमिनीन वहां पर कजावत भी करते थे, अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत का मरकज भी था। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील, हजरत हानी इब्ने उरवा, हजरत मुख्तार सकफी का मजार भी उस मकाम पर है, मौला अली की कत्ल का मकाम भी उस मकाम पर है, मौला अली की कजावत का मकाम भी उस मकाम पर है मस्जिद कूफा में। और सबसे बढ़कर ये कि जब जमाने के इमाम हजरत इमाम मेहदी अजल्लाह तआला फरजहु जब जमाने के इमाम आएंगे तो मस्जिद कूफा को अपना मरकज और महवर बनाएंगे, अपना दारुल खिलाफा, अपना कैपिटल मस्जिद कूफा को और कूफा शहर को बनाएंगे। मस्जिद कूफा में एक दरवाजा है जिसे बाबुस सोबान कहा जाता है, यानी क्या, यानी अजदहे वाला दरवाजा, जहां से अजदहा आया था। क्या वाकया है? अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन असदुल्लाहिल गालिब गालिबो अला कुल गालिब अली इब्नु अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम। मौला खुतबा दे रहे हैं, एक अजदहा आता है और जैसे ही वो मस्जिद में उस दरवाजे से आता है, लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अली इब्ने अबी तालिब इशारा करके रोक देते हैं और कहते हैं इसे आने दिया जाए। अजदहा नजदीक आता है, अपनी जबान में अपने इमाम से गुफ्तगू करता है। علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ. علی صرف انسانوں اور جنوں کے امام نہیں ہے بلکہ علی کی حکومت انسانوں پر بھی ہے, حیوانوں پر بھی ہے, فرشتوں پر بھی ہے, ملائکہ پر بھی ہے. جس کی حکومت آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں جنوں حیوانوں پر ہو اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. یہ سوبان آیا اور ازدہا آ کر کہتا ہے کہ ہمارے جنوں کے قبیلے کے فلاں جن کے جو جنوں کا سردار تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے, اور اب میں آپ سے یہ دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اب جنوں کا سردار کون ہوگا. امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے تجھے جنوں کا سردار مقرر کیا. یہ سوبان چلے گیا. کچھ عرصے کے بعد جب بنو امیہ کی حکومت آئی تو اس دروازے کا جس کا نام باب سوبان تھا, جیسے ہی کوئی بھی باب سوبان سنتا تھا دل میں علی کی فضیلت اجاگر ہو جاتی تھی, دل میں علی کا مقام زندہ ہو جاتا تھا. فوراً سے دل میں خیال آتا تھا یہ جو ظاہری حکومت ہے یہ تو لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہی ہے, لیکن خدا کی قسم ہمارے مولا کی حکومت وہ حکومت تھی جو جسموں پر نہیں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے. علی کی فضیلت لوگوں کے دلوں میں تازہ اور زندہ ہو جاتی تھی. حکومت تبدیل ہوئی, دروازے پر لا کر اسی دروازے پر لا کر ہاتھیوں کو باندھ دیا گیا تاکہ دروازے کا نام تبدیل کر کے باب الفیل کر دیا جائے تاکہ وہ واقعہ ذہن سے نکل جائے. حکومت چلی گئی, حکومت مٹ گئی, دروازہ آج تک باب السوبان کے نام سے مشہور ہے, علی کا ذکر باقی ہے. حکومت تباہ اور برباد ہو گئی, جو علی کے مقابلے میں آیا وہ مٹ گیا, جو علی کے مقابلے میں آیا وہ مٹ گیا, جو علی کے در پر خلوص کے ساتھ آ گیا اللہ نے علی کے ذکر کو باقی رکھا, علی ابن ابی طالب اس کے ذکر کو باقی رکھتے ہیں. میرے مولا اس کے ذکر کو باقی رکھتے ہیں جو اپنے آپ کو مولا کے لیے وقف کر دے. جو بھی ان ذوات مقدسہ کا احترام کرتا ہے اہل بیت اس کے احترام کو ضائع نہیں ہونے دیتے, جو ان کا احترام کرتا ہے آل محمد اس کے احترام کو زندہ کرتے ہیں. حر نے, حر کے اندر جو صفت تھی نا وہ یہی صفت, احترام بہت کرتے تھے آلو. اس احترام نے حر کو حر بنا دی. کربلا کے شہیدوں سے درس حاصل کریں. جب نماز کا وقت ہوا ہے نا, حر قافلے کے سردار اور سالار ہے. جب نماز کا وقت ہوا ہے سب انتظار کر رہے ہیں کہ حر امام بنیں گے اور حر کا لشکر حر کے پیچھے نماز پڑھے گا. حر نے کہا حسین کے ہوتے ہوئے میں ایسی گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا, میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حسین کے ہوتے ہوئے یہ فعل انجام دوں. حر حسین کے لشکر میں گئے اور نماز پڑھی. عباسی بادشاہ کا خلیفہ ہے, عباسی خاندان کا بادشاہ ہے. بغداد کو فتح کرنے کے بعد صفوی خاندان کا بادشاہ ہے. بغداد کو فتح کرنے کے بعد جب وہ وہاں پر سنتا ہے کہ کچھ لوگ حر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, حر کی توہین اور تنقیص کر رہے ہیں, وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خود حر کا مقام دیکھوں گا. حکم دیتا ہے کہ حر کی قبر پر مجھے لے جایا جائے. اسے حضرت حر کی قبر پر لے جایا جاتا ہے. وہ کہتا ہے قبر کو نبش کیا جائے, قبر کو کھودا جائے, قبر کی بے حرمتی کی جاتی ہے. لیکن جب قبر کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے, اس کے احباب دوست افراد دیکھتے ہیں کہ حر کا لاشا اسی تازگی کے ساتھ آج تک باقی ہے. حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ حور کے سر پر ایک رومال بندھا ہوا ہے. کسی لاشے پر تو رومال نہیں ہوتا. چاہتا ہے کہ رومال کو کھول کر دیکھے. رومال کو کھولتا ہے. جیسے ہی رومال کو کھولتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ تازہ خون ہے جو حور کی پیشانی سے جاری ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے, معلوم کرواتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رومال حسین کا ہدیہ ہے جو حسین نے اپنی ماں کا رومال حور کی پیشانی پر باندھا تھا. کہتا ہے کہ یہ رومال میں رکھنا چاہتا ہوں, اس کی جگہ پر کوئی اور کپڑا باندھا جائے حور کی پیشانی پر. دیکھتے ہیں کہ جب حور کی پیشانی پر کوئی اور کپڑا باندھا گیا, خون نہیں رکتا. لیکن جیسے ہی فاطمہ کا رومال حور کی پیشانی پر آتا ہے, خون بند ہو جاتا ہے. رومال کو ہٹایا جاتا ہے, خون دوبارہ سے جاری ہو جاتا ہے. وہ خلیفہ دوبارہ سے حضرت زہرا کے رومال کو حور کی پیشانی پر باندھ کر کہتا ہے کہ اگر کسی کا حق بنتا ہے کہ یہ رومال اس کے سر کا تاج بنے تو وہ حور کی ذات ہے. یہ بادشاہ حکم دیتا ہے. پہلی دفعہ حضرت حور کی قبر پر مزار تعمیر کیا گیا, وہاں پر خادم مقرر کیے. رستے میں حور اور امام حسین کی جب ملاقات ہوتی ہے, امام حسین دیکھتے ہیں کہ حور بھی پیاسا ہے, حور کا لشکر بھی پیاسا ہے. امام حسین کہتے ہیں, عباس کتنا پانی موجود ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ پانی اتنا موجود ہے کہ اگر ہم نے لشکر کو پلا دیا تو شاید ہم پیاسے رہ جائیں کچھ دن کے بعد. امام حسین کہتے ہیں, اپنی فکر مت کرو, آنے والے مسافروں کو پانی پلاؤ. اونٹ کی بلندی سے مشکیزوں کو اتارا جاتا ہے. حور کے لشکر کے ایک ایک فرد کو پانی پلایا جاتا ہے, یہاں تک کہ حور کے لشکر کے حیوانوں کو بھی حسین سیراب کراتے. کس طریقے سے امام ہدایت کر رہے ہیں, کس طریقے سے امام ہدایت کے اسباب فراہم کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حور کے لشکر کا ایک فرد ہے جو تھوڑا دور رہ گیا ہے, تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے, کچھ دیر کے بعد وہ آگے آتا ہے. جب وہ قافلے سے آ کر ملحق ہوتا ہے, سانس اتنی پھولی ہوئی ہے کہ اب وہ مشکیزے کو ہاتھ میں پکڑ ہی نہیں سکتا. امام حسین آگے بڑھتے ہیں, مشکیزے کو ہاتھ میں لیتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کریم امام اس کو سیراب کراتے ہیں. شب عاشور آ گئی, حور سن رہے ہیں کہ وہی حسین جس پہ مجھے سیراب کرایا تھا, میرے لشکر کے گھوڑوں کو سیراب کرایا تھا, آج اس کے بچے الاتاش الاتاش واتشا واتشا کی آوازیں اور صدایں بلند کر رہے ہیں. حور نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. عمر سعد کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں, جناب حور, اے عمر سعد, کیا واقعی میں تو حسین سے جنگ کا ارادہ کرتا ہے, رکھتا ہے؟ عمر سعد کہتا ہے, اے حور, کل جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی کہ تاریخ نے اس سے پہلے جنگ نہیں دیکھی ہوگی. حور اپنے خیمے میں بے چین ہے, نہ کھانا کھا سکتے ہیں, نہ پانی پی سکتے ہیں, بس ایک جملہ کہتے جا رہے ہیں, بس ایک جملے کا تکرار کرتے جا رہے ہیں, یہ وہی حسین ہے کہ جس کی ماں کو فاطمہ کہا جاتا ہے, یہ وہی حسین ہے جس کے بابا کو علی کہا جاتا ہے, یہ وہی حسین ہے جس کے نانا کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یہ حور کے دل میں خیال کہاں سے آیا؟ آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ جب حور نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا اور کہا تھا, اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے, امام حسین نے پلٹ کر کہا تھا, سکلت کا ام کا یا حور, اے
होल तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, ए होल तेरी माँ तुझ पर गिरिया करे। तू किसका रास्ता रोकना चाहता है, तू किसके घोड़े की लगाम में हाथ डालकर खड़ा हुआ है। होल ने पलट कर कहा था, ए हुसैन आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, लेकिन मैं बगैर तहारत के इस मजमे में आपकी माँ का नाम नहीं ले सकता। ये एहतराम, ये मोहब्बत, ये मवद्दत, ये अदब था ना जिसने हुर को जहन्नम से जन्नत तक पहुंचा दिया। ये अदब और ये एहतराम था जिसने हुर को शहदाए करबला की फहरिस्त में शामिल कर दिया। हाँ आजादारो, हुर मुस्तरिब है, परेशान है, और एक दफा हुर अपने खेमे को छोड़ते हैं, अपने बच्चे और भाई को साथ लेते हैं, और ये मुख्तसर सा काफिला हुसैन के खेमे में पहुंचता है। हाथ बंधे हुए हैं, हुर हुसैन के नजदीक पहुंचे। इमाम हुसैन ने कहा, अकबर आगे बढ़ो, अब्बास आगे बढ़ो, मेहमानों का इस्तकबाल करो। और पहुंचे, अपने आप को हुसैन के कदमों में गिरा दिया। हुसैन ने हुर को उठाया, सीने से लगाया, ए हुर मैंने भी तुझे माफ किया, मेरे नाना ने भी तुझे माफ किया, मेरे बाबा ने भी तुझे माफ किया, मेरी माँ फातिमा ने भी, मेरी माँ फातिमा ने भी तुझे माफ किया। ए हुर मैंने तुझे माफ किया। हुर को सीने से लगाया। हुर ने कहा, नहीं 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 आका, मैंने सिर्फ आपका दिल नहीं दुखाया, मैंने ज़ैनब उम्मे कुलसूम का दिल भी दुखाया, मैंने अली की बेटियों का दिल भी दुखाया है। मेरी वजह से अली की बेटियां परेशान हुई थी, जब तक शहजादियों से माफी ना मांग लूं। ए हुर इजाजत है। हुर ने जाकर शहजादियों के खेमे के बाहर माफी तलब की और एक दफा मक्तल की इजाजत मांगी। आजादारों और बाबे मिंबर बयान करते हैं, हुर ने अपनी शहादत से पहले अपने बच्चे को, अपने जवान बच्चे को मैदान में भेजा। हुर का बेटा गया, गजब की जंग लड़ी, और गजब की जंग लड़ने के बाद हुर का बेटा जब जीन से जमीन पर आया, अपने बाबा को आवाज दी, बाबा मेरी मदद को आए। हुर गिरते समझते अपने बच्चे की लाश पर पहुंचना चाहते, जब हुर बच्चे की लाश पर पहुंचे, जब हुर जवान की लाश पर पहुंचे, तो क्या देखा, फातिमा का लाल हुसैन, फातिमा का लाल हुसैन हुर के जवान बच्चे के लाशे पर मौजूद है। हुर ने हाथों को जोड़कर कहा, मौला आपने सहमत क्यों की, कहा गुलाम जादे का लाशा, कहा आपके कदम। इमाम हुसैन ने कहा होगा ना, ऐ हुर जवान बच्चे का लाशा कभी बूढ़ा बाप नहीं उठाता। हाथों को जोड़ कर कहूंगा, बोला जब कुछ देर बाद अकबर आवाज बुलंद करेंगे, अलैका मिन्नी अस्सलाम, अरे आप अकबर के लाशे पर पहुंचेंगे, जवान बेटा एड़िया रगड़ रहा हो, जवान का लाशा और हुसैन तन्हा होंगे। अला वलअनतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबन यनक़लिबून।